रहते थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए अपने प्रिय परिवारों और दोस्तों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और परमेश्वर की उन आशीषों को पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपके पत्रों को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत उत्साह मिलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। कृपया आप पत्र लिखें, प्रार्थना के विषय लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएं। मेरे मित्रों, हम सब इन दिनों जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, वे आपकी महानता को, आपके प्रेम को, आपकी सामर्थ को अपने जीवन में समझने पाए। और हम विनती करते हैं कि आपके वचन को समझकर वे उसके अनुसार चलने पाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। हमें सिखाएं, समझाएं, नम्र और दीन बनाएं, ताकि प्रभु हम आपके निकटता में सदैव बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया की पुस्तक में देख रहे हैं कि जकरिया दर्शन देख रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घुड़सवार से बात करते करते जकरिया ने देखा कि वहां चार सिंह हैं। पूछने पर उस घुड़सवार ने उसे बताया कि ये चार विश्व शक्तियां हैं जिन्होंने इसराइल और यहूदा को तितर बितर किया है। तभी उसने दर्शन में देखा कि वहां चार लोहार आए हैं। जकरिया ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो उसने बताया, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंहों को काट डालने के लिए आए हैं। उन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध सिंह उठाए थे। मेरे प्रियो, इन पर्चियों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय दो से आरंभ करेंगे। अध्याय दो का विषय है नापने की डोरी का दर्शन। इस अध्याय का दर्शन मंदिर और यरूशलेम के पुनः निर्माण से संबंधित है। भविष्यवाणी का अंत यही नहीं होता है। जी हाँ, जकरिया ही नहीं, सब भविष्यद्वक्ता प्रभु राज की ओर दृष्टि किए हुए थे जब यरूशलेम और मंदिर का पुनः निर्माण होगा। उस समय रेगिस्तान गुलाब के समान खिल उठेगा। वहां बहुत रेगिस्तान है। प्रभु यीशु स्वयं यरूशलेम में वास करेगा। आज का यरूशलेम तो मुझे पसंद नहीं है, जैसा पहले भी मैंने कहा है, परंतु प्रभु यीशु के राज में वह हमारा मन पसंद स्थान होगा। तथापि हम वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि नया यरूशलेम कलीसिया का घर होगा। सांसारिक यरूशलेम पृथ्वी का केंद्र होगा और उसमें लोग रहेंगे। आप याद रखें, परमेश्वर ऐसा ही करेगा। अध्याय 1:17 में वह कह चुका है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। अतः जकर्याह के युग में उन्हें जो कुछ करना था उसका महत्व अनंतकालीन था। परमेश्वर इसराइल का त्याग नहीं करेगा। जी हाँ, परमेश्वर को इसराइल से अपना उद्देश्य पूरा करना है। यद्यपि उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर ने उनका त्याग कर दिया है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां निराशजनक थी। परमेश्वर के पास उनके लिए अनंत योजना है, आपके जीवन के लिए भी योजना है। वे हमारे साथ कह सकते हैं, फिलिपियों की पत्री 1:6 के अनुसार लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जी हाँ, आपके अंदर भी जो काम परमेश्वर ने आरंभ किया है यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब हम देखते हैं नापने की डोरी का दर्शन। आप मेरे साथ पढ़िए जकर्याह की पुस्तक 2:1। 2:1 में लिखा है, फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। यहां पर लिखा है, मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा। देखिए, वह जाग रहा है, वह सो नहीं रहा है। तब कहता है, हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। उसका रूप परमेश्वर के स्वर्गदूत का सा था। मेरे प्रियो, देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु जो उसे पहले दर्शन में लाल घोड़े पर सवार दिखाई दिया था। आप सोच रहे होंगे कि जकर्याह तो केवल एक पुरुष कहता है और मैं उसे प्रभु का दूत कहता हूं। देखिए 6:12 में लिखा है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। दाऊद की शाख, ईशय की शाखा। नापने की डोरी को समझने के लिए मैं आपको कुछ बाइबल संदर्भ देना चाहता हूं। कृपया ध्यान दें, यर्मिया की पुस्तक 31:38-39 में लिखा है, देख यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। जब परमेश्वर नापने की डोरी काम में लेता है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसके पक्ष में है। मेरे प्रियो, जिसकी वह चर्चा यहां पर कर रहा है, यर्मिया की पुस्तक में वह यरूशलेम के विषय चर्चा कर रहा है। यहेजकेल की पुस्तक 40:2-4 में लिखा है, अपने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे इसराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे। यह वास्तव में यरूशलेम के प्रभु राज में बनने वाले मंदिर के विषय में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद में भी लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों के नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मेरे प्रियो, यह भी प्रभु राज के समय के मंदिर का माप है। इस प्रकार से हम बहुत से माप की बातों को बाइबल में पाते हैं जो मंदिर से संबंधित है। जकरिया 2 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। लिखा है, तू कहां जाता है? जकरिया ने जिज्ञासु होकर उससे पूछा, यह डोरी लेकर तू कहां जा रहा है? तब उत्तर मिला, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। मेरे प्रियो, उसके कहने का अर्थ था कि यरूशलेम का विस्तार होगा और हुआ भी, वरन आज भी हो रहा है। आज पुराने यरूशलेम नगर के आसपास के पर्वतों पर निर्माण कार्य हो रहा है, परंतु मैं आज के विकास कार्य से जकरिया की भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं मानता हूं। यह भविष्यवाणी दूर अर्थात भविष्य की है। यहूदियों को यदि फिर से तितर बितर कर दिया जाए तो भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी कि वह उन्हें स्वदेश ले आएगा। यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वह चाहता है कि उसके लोग वापस लौट आएं। जकरिया के पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। ध्यान दीजिए, कहता है दौड़कर इस जवान से कह, अर्थात जकरिया से कह, यरूशलेम शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगा। मेरे प्रियो, आज यरूशलेम का अधिकांश नगर शहरपनाह के बाहर है, पहाड़ों पर बसा हुआ है। भविष्य में जब यह भविष्यवाणी पूरी होगी तब भी वहां महान विकास होगा। शहरपनाह की तो अब आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात हम देखते हैं, आज के युग में शहरपनाह किसी काम की नहीं है। दूसरा, वहां शांति व्याप्त होगी, क्योंकि शांति का राजकुमार वहां राज करेगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ऐसा अभी नहीं हुआ है। आज उनकी सहायता अन्य राष्ट्रों से आती है। परमेश्वर कहता है कि भविष्य में वह उनके चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा होगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर स्वयं उनका रक्षक होगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा तो चमत्कार होगा। वह उनका रक्षक तो होगा ही, साथ ही वह उनके मध्य वास भी करेगा, अर्थात शकीना महिमा उनके मंदिर में फिर से उपस्थित होगी। जकरिया के युग में बनाए गए मंदिर में महिमा उपस्थित नहीं थी, परंतु परमेश्वर उस उत्पीड़ित समुदाय को अपनी सुरक्षा का विश्वास दिला रहा है। यह वही प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, जब वह लूत को छुड़ा कर लाया था, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। मेरे प्रियो, इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर उनसे की गई हर एक प्रतिज्ञा निश्चय ही पूरी करेगा। दानियल, यहेजकेल, जकरिया और प्रकाशित वाक्य की चारों पुस्तकें इस पृथ्वी पर स्थापित प्रभु राज की ओर निहारती हैं। मैं यहेजकेल अध्याय 43 से आपको संदर्भ देना चाहता हूं, जो आने वाली महिमा का वर्णन करता है। वह प्रभु यीशु मसीह के मंदिरवास की चर्चा करता है। कहता है, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की सी घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह प्रभु यीशु मसीह के मंदिर प्रवेश का वर्णन है। वह पूर्व दिशा से आता है और यही कारण है कि यरूशलेम की दीवार में पूर्वी फाटक बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि वह आज बंद किया हुआ है, उस द्वार के सामने अनेक कब्रें हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति पर वे फिर जी उठेंगे। वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वहां उपस्थित रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उस नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। न तो इस्राएल का घराना न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। मेरे प्रियो, हम इसे यहेजकेल नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसके 1 से 7 पद में पढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। सदा शब्द बहुत लंबे समय को दर्शाता है। यह भविष्यवाणी यहेजकेल के युग की ही नहीं, यह भविष्यवाणी पृथ्वी पर प्रभु राज के युग की है। जकरिया कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही धन्य बात है कि परमेश्वर आपकी रक्षा में स्वयं आ जाए और वह आपकी रक्षा करे। आज हम में से कितने हैं जो परमेश्वर की निकटता में रहना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं? परंतु इस बात को भली भांति जान ले कि परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप इससे बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने जिनसे जो बातें कही उसे उसने पूरा किया, आज भी वह पूरा कर रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की ओर लौटें, उसको अपनी निकटता में आने दें, हम उसके समीप आएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और यही कारण है कि वे बंधुआई में चले गए और 70 वर्ष बंधुआई में, गुलामी में, दासत्व में बने रहे और तब परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उन्हें वहां से वापस लाया। क्या आज आप बंधुआई की गुलामी में हैं, पाप की गुलामी में हैं? यदि हाँ तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है कि आप उसकी निकटता में आए। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, भविष्यवाणी की बातों को सीखा है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अवश्य ही मनन चिंतन करेंगे, विश्वास करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।